Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschata Desha Tarine Gurave Gaura Chandraya Radhika Tadalye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Vancha Kalpatrubhyascha Kripa Sindho Bhyeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. So kelo din me param puja कृष्णदास स्वामी महाराज जी के तिरुभाव तिथि के उपलक्ष में सब भक्तों ने मिलकर महाराज के महिमा गुणगान और उनकी कृष्ण भक्ति में श्रील प्रभुपाद के अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के विशेष रूप से इंग्लैंड के चैप्टर में लंदन के चैप्टर में उनका जो योगदान रहा और उसके बाद भारतीय मूल के बसे हुए लोग अफ्रीका के अंदर और अन्य स्थानों पे जहां भी थे वहां महाराज का जो कृष्ण भावना के प्रचार का कार्य रहा उनकी स्मृति में यहां सत्संग आयोजन किया है तो सारे आयोजन करने वाले भक्तों का धन्यवाद करते हैं और जो पधारे हैं उन सबका स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत में एक विषय है उसको कहते हैं ईशानु कथा। ईश मतलब भगवान और अनु मतलब उसके अनुगामी मीन्स फॉलोअर मतलब भक्त, भगवान और भगवान के भक्तों की कथा। ये वन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ श्रीमद् भागवत। भागवत के 10 विषयों में से एक विषय का नाम है ईशानु कथा और 9वें अध्याय में 24 अध्यायों में भगवान के भक्तों का गुणगान है। इसलिए कभी कभी भागवत पुराण को भगवान की महिमा का पुराण कहें या भगवान के भक्तों की महिमा का पुराण कहें। इसलिए जहां आया है नित्यम भागवत सेवया, वहां श्रील प्रभुपाद ने लिखा है भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक भागवत ग्रंथ और एक भागवत पुरुष। भागवत ग्रंथ तो नित्य है, जैसे भगवान नित्य है ऐसे भागवत नित्य है। भगवान श्री कृष्ण का ही वाणी के रूप में अवतार है श्रीमद् भागवत। लेकिन इस भागवत को भागवत के अनुसार जीते हुए भागवत का संदेश जो पहुंचाते हैं उनको भी भागवत कहते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भागवत गीयते भागवत स्थाने, भागवत भागवत पुरुष से सुननी चाहिए तब भागवत अपना प्रभाव दिखाएगा, नहीं तो अपनी मर्जी से भागवत सुनने से किताब से पढ़ने से नहीं प्रभाव पड़ता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ऐसे भागवत पुरुष है जिन्होंने इस श्रीमद भागवत भगवान श्री कृष्ण के कलयुग में सूर्य के समान प्रकाश करके अंधकार को नाश करने वाले इस अवतार को, श्रीमद भागवत भगवान श्री कृष्ण का अवतार है कलयुग में, इसको विश्व भर के कल्याण के लिए विश्व व्यापक भाषा में अनुवाद करने के ऊपर प्रभुपाद के जीवन का सबसे ज्यादा समय व्यतीत हुआ। भागवत की ट्रांसलेशन ही प्रभुपाद का बड़े से बड़ा मिशन था। और प्रभुपाद जी के इस भागवत जो ग्रंथ है, ये भागवत ग्रंथ भी है क्योंकि इसके अंदर श्रील प्रभुपाद जी का कमेंट्री है, पर्पस है, इसलिए ये भागवत पुरुष भी है। इसके अंदर भागवत ग्रंथ के साथ प्रभुपाद जी के परपट के रूप में प्रभुपाद भी अंदर है, भागवत पुरुष साथ में है। और फिर भी उनको समझाने के लिए कहते हैं, जैसे भागवत तो बहुत बड़ा सागर है भगवान के प्रेम की भक्ति के रस का, लेकिन जो भागवत पुरुष हैं वो सागर की गहराई में गोता लगाकर अंदर से मोती निकालते हैं। दो प्रकार के लोग समुद्र के किनारे जाते हैं, आप तो समुद्र के चारों ओर घिरे हुए समुद्र के बीच में बैठे हैं, आपका तो ये मॉरिशस तो समुद्र से घिरा हुआ द्वीप है। समुद्र में दो प्रकार के लोग जाते हैं समुद्र के, एक जाते हैं जो किनारे के ऊपर थोड़ा सा नहाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, और उनके साथ कुछ और लोग होते हैं जो बैठ के किनारे के ऊपर मछली पकड़ते हैं। तो एक एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं और एक मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग, मेरे ख्याल में मॉरिशस की गिनती करें तो कोई 1.2 मिलियन में कोई 20 भी ऐसे नहीं होंगे जो समुद्र की गहराई में जाके अंदर से पर्ल्स लेके आए, मोती लेके आए। कोई है क्या ऐसे जो मोती ढूंढने के लिए जाने वाले, कोई देखा है क्या? नहीं ना। तो समुद्र के किनारे के ऊपर तो बहुत लोग भटकते रहते हैं भोग के लिए, और नहीं तो पेट को भरने के लिए मछली खाने वाले। लेकिन भागवत रूपी समुद्र की गहराई में जाकर और उसके अंदर से मोती निकाल के लाना, ये भागवत पुरुषों का काम होता है। तो समुद्र को इसलिए कहते हैं समुद्र, जिसके पेट के अंदर हीरे मोती होते हैं। मुद्रा का मतलब होता है धन। और इसको नाम इसका सागर कैसे पड़ा, समुद्र को सागर कहते हैं ना, सागर इसका नाम इसलिए पड़ा कि सगर महाराज के, सगर महाराज जिसने धरती के ऊपर जिसके पुत्र गंगा बाद में लाए, उन्हों के द्वारा खुदाई करके बहुत सी जगहों पे घोड़ा ढूंढते हुए जो जगहें बन गई, तो उनका नाम सगर से सागर, सागर वैसे नाम ऐसे सगर सागर हो गया, लेकिन इसका पुराना नाम समुद्र है। तो मुद्राओं के साथ इसको कभी कभी इसका दूसरा नाम होता है, उसको कहते हैं रत्नाकर, रत्न इसके पेट में, रत्न रत्न का मतलब ज्वेल्स होते हैं। तो ये बहुत बड़ा भागवत पुरुष जो होते हैं वो समुद्र की गहराई में जाते हैं। तो ऐसे जो पुरुष होते हैं वो बहुत कम होते हैं, लेकिन वो पुरुष पूरे विश्व के अंदर भगवान के प्रेम का प्रचार करते हैं, भगवत के भगवत नाम भगवत वाणी का प्रचार करते हैं। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद ने ऐसे हजारों लोगों को, जैसे क्रीम नहीं, दूध के ऊपर क्रीम आती है और क्रीम से मक्खन बनता है और फिर मक्खन से घी बनता है, तो लोग तो बहुत कथाओं में आते थे, लेकिन प्रभुपाद ने ऊपर से क्रीम क्रीम के ऐसे लोग जो भगवान की सेवा कर सकते हैं उनको लिखा निकाला, क्योंकि उनके हृदय में क्रीम के बाद मक्खन बनता है और मक्खन जो होता है वो गर्मी लगने से पिघल जाता है। तो साधु का जो हृदय होता है वो मक्खन से भी नाजुक होता है। मक्खन को तो खुद को गर्मी लगती है तब पिघलता है, लेकिन साधु दूसरे का दुख नहीं देख सकता है, पिघल जाता है। तो साधु का हृदय पिघलता है दूसरे का दुख देकर, और मक्खन पिघलता है स्वयं को गर्मी लगती है तब। तो प्रभुपाद जी के मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि दुखी लोगों को सुखी करना। लोग दुखी क्यों है? रजोगुण और तमोगुण लोगों को दुख में डालता है, और सुखी कौन है? जो सतोगुण की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये जो महात्मा लोग, साधु लोग, जिन्होंने बड़ा परिश्रम, बड़ी उम्र में, मुझे तो महाराज के दर्शन वृंदावन में तो होते रहते थे, लेकिन यहाँ एक वर्ष फिनिक्स के मंदिर, इसमें अपने बुनाके के मंदिर में महाराज के प्रवचन में बैठे थे, तो एक बात महाराज ने कही थी, अभी भी हमको याद है। एक तो आपको सबको याद होगा, महाराज कहते थे बद्री नारायण भगवान। वैसे बद्री नारायण भगवान का नाम जब लेते हैं, क्योंकि वो भारतवर्ष जिसमें हम सब लोग रहते हैं, आप मॉरिशस में रहते हैं फिर भी भारतवर्ष है, क्योंकि भारतवर्ष की जो वेदों में भारतवर्ष का वर्णन है वो है धरती का टुकड़ा जो खारे पानी के समुन्द्र से घिरा हुआ है, उसको भारतवर्ष कहते हैं। तो पूरी लैंड का नाम, जितनी भी लैंड दुनिया में, उसका नाम भारतवर्ष। बाद में डिवाइड करके लोगों ने उसके नाम बदले, लेकिन शास्त्र की भाषा में उसी को भारतवर्ष कहते हैं। नहीं तो आज जिसको आप भारत कहते हैं, ये 60 साल पहले भारत तो इससे ज्यादा लंबा था, तब तो कोई ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान भी नहीं था उस वक्त में, तो बर्मा भी नहीं था, ये सब तो, ये तो अभी 100 साल पहले भी ये तो सब भारत कहलाता था। और महाभारत के समय में तो जो धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी थी, वो तो कंधार काबुल से आई थी, वो अफगानिस्तान से आई थी, तो अफगानिस्तान तो भारतवर्ष था ही। तो ये भारतवर्ष की सीमाएं, ये पूरी धरती का नाम है, और भारतवर्ष का आराध्य देव है नर नारायण, और वो विराजमान होते हैं बद्रिक आश्रम में, और बद्रिक आश्रम में नर नारायण भारतवर्ष के आराध्य देव है, और नारद जी उनकी सेवा करते हैं। और महाराज कह रहे थे उसको बद्री नारायण क्यों कहते हैं? आप में से किसी को याद है महाराज ने कहा था बद्री नारायण क्यों कहते हैं उसको? बद्री कौन है, नारायण कौन है? ये महाराज का प्रवचन मेरे को आज तक याद है। बद्री है लक्ष्मी। नारायण जब तपस्या करने लगे नर नारायण ऋषि, तो लक्ष्मी वैकुंठ से देखा कि पति तपस्या कर रहा है, तो बेरी का पेड़ बन गई, मौसमू कौन क्या कहते बेर को आपके देश में, अभी मासूमी मासी का मा मासी मासीमी मासूमी मासूम, तो मासूम का पेड़ बद्री कहते हैं मासूम के पेड़ को, वो है लक्ष्मी, वहां मासूम का पेड़ बन गई और नारायण को छाया देने लगी तपस्या करने को करते हुए, और फल भी देने लगी मासूम का। यह है भगवान नारायण खाते थे ना मासूम मासूम। तो नाम भगवान ने कहा कि जैसे लोग लक्ष्मी नारायण कहते हैं, अभी लोग बद्री नारायण कहेंगे मुझे, तो बद्री असल में लक्ष्मी है, उस दिन ये महाराज ने कहा था। और फिर महाराज ने एक बहुत बड़ी गंभीर और गहरी बात कही थी। महाराज ने कहा श्रील प्रभुपाद ने प्रचार करके पाश्चात देश मीन्स वेस्टर्न वर्ल्ड, पाश्चात हिंदी में होता है, संस्कृत में मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड, जिसको हम कहते हैं यूरोप अमेरिका, ये वेस्टर्न वर्ल्ड। तो महाराज कह रहे थे प्रभुपाद जी के प्रचार का प्रभाव ये था कि लोग जो कभी जानते नहीं थे गीता भागवत को, जो कभी जानते नहीं थे कृष्ण राधा को, जो नहीं जानते थे राम को, वो सब वैष्णव बन गए। और आज महाराज अनुभव से कह रहे थे, आज हम सब लोग प्रचार करके ये भारतीय उनको कहते हैं आओ आपको भक्त बनाए। प्रभुपाद कहते हैं ये तो पहले से भक्त है, इनके ऊपर टाइम मत लगाओ, ये तो अगर पहले से भक्त है, इनको क्या भक्त नया बनाओगे। हाँ ये तो पहले से भक्त है, थोड़ा सा माया का पर्दा है, वो एक बार हरे कृष्णा करोगे तो ये तो अपने आप हरे कृष्ण कीर्तन करने लगेंगे। एक भी भारत का ऐसा नहीं होगा आप में से जिसको हम बोले हरे कृष्णा और उनको पता नहीं कृष्ण कौन है, राम कहें तो राम कौन है, ये तो आपको समझाने की जरूरत नहीं। लेकिन प्रचार जहां करने चाहिए वहां कोई कर नहीं रहा है, ये महाराज के हृदय में बहुत बड़ी करुणा दया थी कि वो चाहते थे कि प्रचार प्रभुपाद जी करना चाहते थे उन लोगों को जो जानते ही नहीं है वैदिक सनातन धर्म को, वर्ण आश्रम की व्यवस्था को जानते नहीं है। प्रभुपाद जी के शब्दों में जो फिफ्थ क्लास एंड सिक्स्थ क्लास है, प्रभुपाद कभी लिखते थे फर्स्ट क्लास ब्राह्मण, सेकंड क्लास क्षत्रिय, सेकंड थर्ड क्लास प्रभुपाद जी कभी बोलते वैश्य, फोर्थ क्लास, ये तो कम से कम वर्ण आश्रम में तो है ना, वर्ण आश्रम में है इसका मतलब सनातन वैदिक धर्म के वो फोल्ड के अंदर तो है ना, सरकमफ्रेंस में तो है ना, लेकिन इसके बाहर जो सिक्स क्लास सेवेंथ क्लास एट्थ क्लास प्रभुपाद जी कहते थे, वो जो जिसके लिए शब्द कहा गया है यवन मलेच सुनी स्वपाके च, स्वपाके जो दोज हु ईट दी ढाग, क्या बोलते हैं ढाग को यहाँ, कुत्ते नहीं, यहाँ क्या बोलते हैं, लीशा, लीशा खाने वाले उनको कृष्ण भावना देना ये प्रभुपाद जी का मुख्य उद्देश्य था। और ये प्रभुपाद जी का भाव भागवत में हम एक श्लोक देखते हैं और वो श्लोक प्रहलाद महाराज की प्रार्थना का श्लोक है, और वो प्रहलाद महाराज की प्रार्थना आज भी प्रहलाद महाराज उस श्लोक से प्रार्थना कर रहा है हरि वर्ष में, और वो हरि वर्ष इस जम्बू द्वीप में है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें भारत वर्ष एक है, दूसरा वर्ष हरि वर्ष है, और उस हरि वर्ष में प्रहलाद महाराज आज भी नरसिंह देव को कहते हैं स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, सारे विश्व का कल्याण हो, ये प्रहलाद महाराज का प्रार्थना है, पूरे विश्व का कल्याण हो। और फिर दूसरी लाइन में कहते हैं खलाओ प्रसीदति, खल कहते हैं बदमाश को, खल कहते हैं एनवीएस को, खल कहते हैं जो धर्म को नहीं मानता है और धर्म के ऊपर चलने वाले को दुख देता है, उसको खल कहते हैं शास्त्र में। खल प्रसीदति, प्रसीदति का मतलब वो प्रसन्न हो जाए, जो खल है जो दुनिया को दुख देते हैं वो भी शांत हो जाए, वो भी शांत हो जाए। क्यों? क्योंकि वो शांत नहीं होंगे तो हम कैसे शांत रह सकते। तो बोले कैसे वो शांत हो सकते हैं, तब प्रहलाद महाराज कहते हैं मन समरेत अधोक्षजय, हम लोगों को भगवान की भक्ति में लगाएंगे तो जो भक्त बनेंगे वो कहेंगे इनका भी भला करो भगवान। जैसे हरिदास ठाकुर को जब उस समय के काजी के लोग 22 मार्केटों में जाकर कोड़े मार रहे थे और हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण जप रहे थे और वो कहते थे आप मरते क्यों नहीं हो, आप मरेंगे नहीं तो काजी हमको मरवा देगा, राजा हमको मरवा देगा, तो बोलते मेरा मरने से आपकी जान बच जाएगी तो लो मैं मर जाता हूं। हरिदास ठाकुर ऐसे समाधि में चले गए, उन्होंने उठा के नदी में फेंक दिया, लेकिन हरिदास ठाकुर को तो कुछ होना नहीं था, भगवान जिसकी रक्षा करते उसको कौन मार सकता है, लेकिन उनको तकलीफ ना हो जो मार रहे हैं कि तुम्हारे को दंड मिल जाएगा अगर मैं नहीं मरूंगा तो चलो मैं मर जाता हूं। और चैतन्य महाप्रभु एक 21 घंटा उसको कहते हैं सप्त पहर लीला, श्री श्रीवास ठाकुर के घर पे श्री चैतन्य महाप्रभु विष्णु के सिंहासन के ऊपर बैठकर 21 hours out of 24 hours 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, एक पहर 3 घंटे का होता है, इसको कहते हैं 8 पहर। 7 पहर लीला की मतलब 21 आवर, 21 घंटे आवेश में सब भक्तों को बुलाए, हरिदास को बुलाया, हरिदास तुम्हें जब वो लोग कोड़े मार रहे थे मैं उन लोगों को दंड देने के लिए आया, लेकिन तुम प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान ये नहीं जानते हैं मुझे क्यों मार रहे हैं, भगवान इनको बुद्धि देना, इनको क्षमा कर देना। अब आप उनके क्षमा के लिए, उनको फॉरगिव करने के लिए मुझे प्रार्थना कर रहे थे, तो मैं कैसे उनको मारूं? लेकिन मैं आपको भी कोड़े खाते देख नहीं सकता था, आपको कोड़े मार रहे थे। तब हरिदास देखो, फिर महाप्रभु ने अपना चादर उठा के कंधे के ऊपर से उतरी कपड़ा का, देखो हरिदास पीठ के ऊपर वो कोड़े के निशान मेरी पीठ के ऊपर मैंने खाए, मैं तुम्हारे को अच्छी तरह से जैसे चादर में किसी को ढक देते हैं मैं तुम्हारे ऊपर लपट गया और वो कोड़े सारे मेरी पीठ के ऊपर लगे हैं। इसको कहते हैं खलो प्रसीदताम, उनका भी भला चाह रहे थे, जो मार रहे थे उनका भला चाह रहे थे। एक चेतना चरितमृत में कथा आती है वासुदेव दत्त की। वासुदेव दत्त कहते हैं एक दिन चेतना महाप्रभु को, हे महाप्रभु ये पापी लोग नरक में जाएंगे, बहुत दुख भोगेंगे, एक काम करो कृष्ण को प्रार्थना करो इन सारों के पाप का दंड मुझे दे के नरक में डाल दे, इन सबको मुक्त कर दे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद लिखते हैं कि लोग कहते हैं कि एक जीसस क्राइस्ट हजरत ईसा, ये परपट है उधर, वो कहता है पहले तुम मेरा शरण लो तो तेरे पाप मैं लूंगा, यू एक्सेप्ट मी देन आई विल टेक योर सिंस। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का एक एक पार्षद, एक एक फॉलोअर पूरी दुनिया का पाप लेने को तैयार है और कोई कंडीशन नहीं। तो एक एक महाप्रभु का फॉलोअर पूरी दुनिया को उधार कर सकता है, एक फॉलोअर उधार कर सकता है पूरी दुनिया का। और उस वक्त चेतना महाप्रभु ने जब ये सुना तो कहा वासुदेव तुम्ही साक्षात प्रहलाद, तुम प्रहलाद महाराज हो। ऐसा प्रहलाद महाराज था जो कह रहा था मुझे अकेले को भगवान के धाम नहीं जाना है, जब तक ये सारे राक्षस ये सब असुर भगवान धाम नहीं जाते मैं अकेला नहीं जाऊंगा, इन सब का उद्धार कैसे होगा? आज तुम कह रहे हो कि इनका उद्धार हो। तब महाप्रभु कहते हैं कृष्ण असमर्थ नहीं, कृष्ण असमर्थ नहीं है, इज नॉट इनकैपेबल कि तुम्हारे को पाप भुगता देगा तब दूसरों का उद्धार करेगा, नो कृष्ण असमर्थ नहीं। तो कृष्ण का काम क्या है? कृष्ण नहीं और कृत्य भक्त वांछा पूरी करे, कृष्ण का एक ही काम है अपने भक्तों की इच्छा पूरी करता है। इसलिए वैष्णव को कहते हैं वांछा कल्पत्रुभ्यश्च, वैष्णव कौन है? जो कल्प वृक्ष की तरह सबकी इच्छा पूरी करता है। कृपा सिंधु भया, वो कृपा सिंधु, सिंधु कहते हैं सागर को, कृपा का सागर है। वासुदेव दत्त को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण असमर्थ नहीं है कि तुम्हें पाप सबका तुम्हारे सर के ऊपर डाल के तुम्हारे को नरक में डालेगा, नहीं तुम इच्छा करो कि इन लोगों का उद्धार हो जाए तो कृष्ण तो तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए उनको भक्त बना देगा और ये भक्त अपने आप तर जाएंगे। इसका अर्थ है जो किसी को भक्त बनाने का सामर्थ्य रखता है उसके ऊपर कृष्ण की कृपा है। वैष्णव की पहचान ये है कि उसने और कितने भक्त बनाए, अपने जैसे और कितने साधु बनाए। और साधु उसको, वैष्णव उसको कहते हैं जिसको देख के भगवान का नाम याद आए। आगे महाप्रभु कहते हैं सुनो वासुदेव, ये एक ब्रह्मांड, ये एक लोक भगवान के लिए ऐसे है जैसे एक सरसों का दाना, एक मस्टर्ड सीड, बोरी मस्टर्ड सीड की भरी हुई, उसमें से एक दाना गिर गया कोई चुनता है क्या? आपके किचन में मस्टर्ड का सीड गिर जाए तो somebody is looking for that? No. तो भगवान के लिए तो एक ब्रह्मांड को ही ऐसे तार देना कोई बड़ी बात नहीं है. आप प्रचार करने का प्रयास करो तो भगवान कई लोग भक्त बना देगा. और प्रभुपाद इसका प्रमाण है कि एक व्यक्ति ने पूरे विश्व के अंदर वैदिक भारतिक सीमा से बाहर जो जो वर्ण आश्रम और वैष्णव सिद्धांत को जानते ही नहीं थे उनको पूरे विश्व के अंदर कृष्ण भक्ति में अग्रसर कर दिया, आगे बढ़ा दिया. एक व्यक्ति ने ये इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस एस्टेब्लिश किया. प्रभुपाद लिखते हैं सिंगल हैंडेडली मैं अकेला बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी साथ के, बगैर किसी पैसे के सहारे के, बगैर किसी मैन पावर के, अकेले मैं अकेला ओनली माई सेल्फ. और एक साल तक मुझे बड़ी निराशा हुई. आई वॉज कहीं से मेरे को आशा दिखाई नहीं दी, कोई होप नहीं थी. हर 15 दिन के बाद मैं जाता था सुमती मुरारी जी की ऑफिस में, कहता था आपका नेक्स्ट शिप कब वापस जाएगा इंडिया. फिर कहता चलो एक 15 दिन और ट्राई कर लेता हूं, गुरु जी ने भेजा है तो. सो एक साल तक तो बड़ा परिश्रम करना पड़ा, बड़ा एंग्जाइटी तो थी लेकिन बहुत बड़ा होपलेसनेस था. लेकिन जब भगवान ने देखा कि उनका काम करना वही काम करना है, उसके बाद उन्होंने चमत्कार अपना दिखाना शुरू कर दिया. एंड देन अचानक ऐसा, उसको कहते हैं एक पुस्तक लिखा है हाईग्रीवा प्रभु ने, जो श्रील प्रभुपाद के अंग्रेजी की टाइपिंग करते थे पुस्तक को पहले, उन्होंने किताब लिखा है, उसका नाम है एक हरे कृष्ण एक्सप्लोजन. हरे कृष्ण एक्सप्लोजन का मतलब जैसे बम फटता है ना, ऐसे हरे कृष्ण एक्सप्लोजन हुआ और सब जगह लोग हरे कृष्ण जपने लगे. वो जॉर्ज हैरिसन हरे जम सब वो उसका रिकॉर्ड पूरी दुनिया में बजने लगा, हरे कृष्ण लोगों को पता नहीं है क्या जप रहे हैं. लेकिन इतना इस कीर्तन का प्रभाव उस समय हुआ 66, 7, 8, 9 में और अर्ली 70s में. आप समझिए 67 से लेके और 77 तक ये प्रभुपाद की 10 साल है. 67 में इस्कान की स्थापना की और 77 में प्रभुपाद जी वापस भगवत धाम भी चले गए. इन 10 सालों के अंदर पूरे दुनिया के अंदर वाइब्रेट हुआ हरे कृष्ण महामंत्र, ऐसा वाइब्रेट हुआ और इतने पुस्तक वितरण हुए कि दुनिया सरप्राइज है, आश्चर्य, व्हाट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड, सोच नहीं पा रहे हैं कि ऐसे हो कैसे गया इसे. सो एक व्यक्ति, भागवत में लिखा है अगर कोई एक व्यक्ति भी उद्गायंती नृत्यंती, कभी कभी उच्च सुर में गाता है, कभी नृत्य करता है, रुदंती कब रोता है, पुनाति भुवनम, पूरे भूमंडल को पवित्र कर सकता है. 70, 71, 72, 77, 74, 5 ईयर्स की एज में प्रभुपाद वॉज डांसिंग लाइक ए यंग मैन. इस उम्र में डांस करना कीर्तन के अंदर इट्स नॉट आम व्यक्ति की बस की बात नहीं. एंड प्रभुपाद वॉज एंड वो एक प्रभुपाद एक हाथ ऊपर उठा देते और 1000 आदमी ऊपर आकाश में उठते कूदते थे. सो रिवोल्यूशनाइज कर दिया एक व्यक्ति ने. और उन प्रभुपाद की सहायता में जैसे कृष्णदास स्वामी महाराज जैसे कई और भारतीय प्रभुपाद जी को एक मिलता था तो उनको लगता था कि ये कृष्ण भावना को लेंगे तो स्थायी रूप से आगे बढ़ पाएंगे. बहुत अच्छा लगा जब विदेशी बहुत सारे भक्त बने और कृष्ण भावना को लिया. प्रभुपाद वॉज वेरी एनलाइवेंड. लेकिन पहली बार स्वरूप दामोदर महाराज उनको मिले, PhD कर रहे थे, तो प्रभुपाद वॉज टू हैप्पी टू फाइंड वन. वो मणिपुर से उनको कहा कि आप साइंटिस्ट में प्रचार करो. फिर गोपाल कृष्ण महाराज उनको मिले जब तो MBA करके फ्रांस से आए थे. प्रभुपाद वॉज टू हैप्पी, यू प्रिंट बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस, ये काम दे दिया। फिर कृष्णदास महाराज इंग्लैंड में मिले, यू प्रीच सनातन धर्म टू दी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोकनाथ महाराज मिले उनसे, बस उस वक्त में मानो के 100 भक्तों के अंदर एक भक्त भी इंडियन नहीं हुआ करता था, और अब ऐसे है कि 100 इंडियन में एक वेस्टर्न नहीं है। ये प्रभुपाद का ट्रुथ है कि ऑल इंडियंस आर डिवोटी ऑलरेडी। देखो आप कहीं देखा 100 में एक भी नहीं है, हम यहां बैठे हैं 50, 80, 90, 100 भक्त, एक भी फॉरेनर नहीं है, नहीं है ना। और पहले ऐसे होता था 100 भक्त कहीं है तो एक भी इंडियन नहीं होता था, जस्ट अपोजिट हुआ करता था उस वक्त में। और एक भी कोई मिलता था, प्रभुपाद वाज सो हैप्पी। और सुभाग स्वामी महाराज इंग्लैंड में उनको मिले, पढ़ रहे थे और बंगाली थे छोटे से, प्रभुपाद वाज सो हैप्पी टू सी वन यंग मैन टू बिकम ए डिवोटी फ्रॉम बंगाल। सो ये 4, 5, 6 रतन प्रभुपाद जी को उस वक्त में मिले, और इन लोगों ने पूरा अपना जीवन, ये सब सन्यास ले लिया, सारे स्वरूप दामोदर महाराज सन्यास ले लिया इमीडिएटली, गोपाल कृष्ण महाराज सन्यास ले लिया, लोकनाथ स्वामी महाराज सन्यास ले लिया, प्रभुपाद कृष्णदास महाराज सन्यास ले लिया, जो भी पहले उनको मिले दे ऑल टुक सीरियसली द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्प्रेडिंग द मूवमेंट एंड हेल्पिंग श्रील प्रभुपाद। सो मैं बात कथा जहां से शुरू करी थी वहां वापस आते हैं, ईशानु कथा। ईश मतलब भगवान और अनु मतलब उसके अनुगामी, अनुगामी मीन्स फॉलोअर्स। उनकी कथा करने से लाभ क्या होता है? भागवत में लिखा है ईशानु कथा, हमारे हृदय में जो कर्म की वासनाएं हैं, जो कर्म के फल भोगने के लिए आगे जन्म लेने के संस्कार हैं, वो सब भुन जाते हैं, दे आर ऑल कंप्लीटली फ्राइड रोस्टेड, कुछ नहीं बचता है। ईशानु कथा हृदय को ऐसा शुद्ध कर देता है कि फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। तो भगवान और भगवान के भक्तों की कथा और महिमा, इसको जहां मिले जब मिले सुनना चाहिए। और ये नवे स्कंद में विशेष रूप से खास करके ईशानु कथा है, और जैसे पूरा होता है तो दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता है। इसका मतलब भगवान के अवतार की कथा और भगवान के भक्तों की कथा हमारे को भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाती है। बाकी पूरी भागवत में दूसरे स्कंद से लेकर पहला और दूसरा स्कंद है फाउंडेशन, भागवत की भूमिका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरे स्कंद से लेकर भगवान के अवतारों का वर्णन है, और नवे स्कंद तक अवतारों का वर्णन है, और इसमें 24 अवतार सारे आ जाते हैं। इस बीच में कृष्ण कहीं नहीं है, भगवान के अवतार और उनके भक्त इनका कथा है। तब दसवें स्कंद में पहली बार भगवान श्री कृष्ण दोबारा प्रकट होते हैं। पहले स्कंद में भगवान श्री कृष्ण है भक्त वत्सल पांडवों की रक्षा करते हुए, तब उनका दर्शन होता है। फिर नौ स्कंद में भगवान श्री कृष्ण नहीं है, केवल भगवान के अवतार और भगवान के भक्तों की कथा है। दसम स्कंद में पूरी कृष्ण की कथा है। 11वें स्कंद में तो भगवान श्री कृष्ण जो गीता में अर्जुन को कहने में रह गया था, जो पूरा नहीं कह पाए थे, उसको कंप्लीट करने के लिए उद्धव गीता बोल दी। तो उद्धव गीता आर दी गैप्स लेफ्ट इन दी गीता स्पोकन टू अर्जुन, वो उसमें डाला है, वो पोस्ट ग्रेजुएट है। वहां भगवान का बहुत बड़ा, पूरी भागवत में सबसे बड़ा संदेश उद्धव गीता है, डायरेक्टली भगवान का। और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा संदेश भगवान का तीसरे स्कंद में देवहूति माता को कपिल देव का है। एक संदेश तो उद्धव के लिए और एक माता देवहूति के लिए। देवहूति उसको कहते हैं जो देव का आवाहन कर सके, जो भगवान को अपनी गोद में खिलाने का सामर्थ्य रख सके, जिसमें ये एबिलिटी है कि भगवान को बुला के गोद में बिठा सकती है, खिला सकती है, उसको बोलते हैं देव आहूति। देव का आवाहन करना मतलब देव को बुलाना। तो देवहूति माता ने कपिल देव से जो दर्शन सुना है, दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट डिस्कोर्स इन श्रीमद भागवत। 12 स्कंद में फिर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं है, फिर तो प्रलय का दर्शन है, फिर तो कलयुग का दर्शन है कि कलयुग कितना भारी समय आएगा। ये सुन के तो सुख परीक्षित महाराज बड़े दुखी हो गए। केन उपाय न कली जना, कौन सा उपाय है, कौन सा रास्ता है कलयुग के लोगों का उद्धार किया जाए? अब इनके उद्धार का कोई रास्ता बताइए। और उस वक्त सुखदेव महाराज के मुख से निकला, कलेर दोषे निधे राजन, हे महाराज परीक्षित, कलयुग तो फॉल्ट का ओशन है, दोष का सागर है। अरे परीक्षित महाराज ने कहा, हाउ कैन समबडी स्विम थ्रू द ओशन? आप यहां से स्विम करके इंडिया जा सकते हो क्या, इंडियन ओशन से? नो, कितना अच्छा स्विमर हो समुद्र पार नहीं कर सकता, इट मीन्स ही इज गोइंग टू ड्राउन डेफिनेटली, तो डूब ही जाएगा। तो परीक्षित वॉज वेरी अपसेट, भाई क्या होगा, मैं राजा हूं, मेरी प्रजा, मैं राज ऋषि, मैं पांडु वंश का, मेरी रक्षा के लिए भगवान मेरी मां के पेट में आ गए, उदर में आ गए, और आज मेरी प्रजा कलयुग से इतनी दुखी हो जाएगी। और जब उनके चेहरे के ऊपर निराशाई देखी तो सुखदेव महाराज ने कहा, अस्ति एको महागुण, एक बड़ा गुण है कलयुग में। परीक्षित महाराज कहते, प्लीज टेल मी क्विकली, जल्दी बताइए, क्योंकि अब मेरा टाइम बहुत कम बचा है, अब मैं अभी यहां से जाने वाला हूं, सातवां दिन है आज। इफ आई फॉलो दिस नाउ, अगर मैं आप कहें और मैं उसका पालन करूं तो फिर मेरी प्रजा पालन करेगी और कलयुग के दुख से बच जाएगी, बिकॉज आई एम किंग। जब जब श्रेष्ठ आचरति श्रेष्ठ, जैसे कोई बड़ा आदमी कई कार्य करता है तो आम आदमी उसके पीछे चलते हैं, तो मैं इसका पालन करूं। बताइए सुखदेव महाराज, क्या ऐसा एक गुण है कलयुग का? वैसे कलयुग में एक प्रश्न कभी पूछते हैं कि जब परीक्षित महाराज ने कलयुग के ऊपर विजय प्राप्त करी, ही कांकर्ड कलयुग, व्हाई डिड नॉट किल, मार दिया होता ना तो आज हमारी जान छूट जाती। तो आंसर ये दिया गया है कि अच्छे आदमी को सब में अच्छाई दिखाई देती है। परीक्षित महाराज को कलयुग में अच्छाई दिखाई दी। क्या अच्छाई दिखाई दी? कि त्रेता सत्य युग में ध्यान करने से कई हजार साल किसी को भगवान का दर्शन होता था, त्रेता युग में मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके, रुपया खर्च करके यज्ञ करता था तब कोई देवता प्रकट होता था उसमें, द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिरों की पूजा करने के बाद कहीं भगवान का दर्शन होता था, लेकिन कल युग में केवल कली केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरई पारा, यहां तो केवल भगवान का नाम लेने से भगवान मिल जाए। तो कली का एक अर्थ है कलह का युग, कलह मीन्स क्वार्म, लेकिन दूसरा कली का अर्थ बहुत अच्छा है, केशव लयते इति कली का केशव, केशव मतलब श्री कृष्ण, लयते का मतलब जल्दी में मिला दे, भगवान से जो जल्दी में मिला दे वो कली। तो ये ऐसा युग में अच्छाई दिखाई दी परीक्षित महाराज को, दिखाई दी कि कोई एक बार हरे कृष्णा भी जपेगा तो कलयुग के पाप से पार हो जाएगा। तो कलयुग बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि महाराज आप समझते हो कि ये हरे कृष्णा जपेंगे? महाराज इनको मैं जपने नहीं दूंगा। कलयुग ने कहा, बहुत अच्छा है, कलयुग में हो सकता है लेकिन ये जपेंगे नहीं। तब प्रभुपाद जी कहा करते थे, कलयुग में लोगों को भगवान का नाम जपाना घोड़े को दवाई पिलाने के बराबर है। घोड़े को चार आदमी पांव पकड़ने के लिए चाहिए, एक मुंह खोले और छठा आदमी दवाई डालेगा तब जाके घोड़े को दवाई दी जाएगी। इसलिए संकीर्तन करना पड़ेगा, मृदंग करताल उठा के गली गली में हरे कृष्णा गाना पड़ेगा, तब जाके लोग हरे कृष्णा मुश्किल से जपना लगेंगे। सो कलयुग का क्या अच्छा गुण है? केवल भगवान के नाम लेने से कलयुग में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और कलयुग का एक बड़ा गुण है, लिखा है शास्त्र में, अन्य युगों में पाप नहीं करो लेकिन पाप का विचार करो तो भी पाप का फल भोगना पड़ता था, और अच्छाई आप कितनी सोचो जब तक करोगे नहीं तक तो फल नहीं मिलता था, लेकिन कलयुग में उल्टा है, कितना भी दिमाग में उल्टा सीधा करो, कोई पाप नहीं है, जब तक करोगे नहीं तब तक दंड नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरा लाभ क्या है, आप पुण्य का सोचो केवल, करो मत, तो भी उसका फल मिल जाएगा। कलयुग का सबसे बड़ा लाभ ये है, कल आप सुबह उठ के कहो कि मैं आज एक बड़ा मंदिर भगवान श्री राधा गोविंद के लिए बना रहा हूं, ये 500 मिलियन का मंदिर है मेरा, इसके अंदर सोने की मूर्तियां स्थापन कर रहा हूं, और फिर मैं 1000 ब्राह्मणों को भोजन करा रहा हूं, भले नहीं कराऊ लेकिन आप सोचो तो इतना आपको फल मिल जाएगा। लेकिन मैंने कह कह के मैं थक गया हूं, लेकिन मुझे ही दूसरे दिन ये कहना आता ही नहीं, कल जो करने ही नहीं देगा। आप करके देखना, कल आप अच्छाई का कल सोच के देखना कि मैंने ब्राह्मणों को दान दे दिया, 100 गाय को पाल लिया, 100 गाय को घास खिला के, आप कल करके देखना, याद ही नहीं आएगा। करोगे तो फल मिलेगा, लेकिन कल जो करने नहीं देगा। इतना बड़ा लाभ है कि आप अच्छाई सोचो तो आपको फल मिलेगा, लेकिन कोई सोच नहीं पा। तब आप सुखदेव महाराज के आखिर शब्द सुने, फिर प्रसाद खाइए और अपने घर जाइए। अस्ति एको महागुण, अरे क्या है जल्दी बताओ महाराज, सुखदेव कौन सा है, समय बहुत कम है। कीर्तन कृष्णस्य, उस वक्त सुखदेव की जीभा के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती को बिठा दिया, कहता कीर्तन कृष्णस्य, ये भी नहीं कहा भगवान का कीर्तन, ये भी नहीं कहा परमात्मा का कीर्तन, ये भी नहीं कहा ब्रह्म का कीर्तन, कृष्णस्य, कृष्ण का कीर्तन। इतना साफ सीधा शब्द कहा है, इसका कोई और अर्थ निकल नहीं सकता है। कृष्ण कीर्तन कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेता, मुक्त संग का मतलब दुनिया के बंधन से मुक्त कर देगा। कहां ले जाएगा, मुक्त होने का मतलब जेल से बाहर निकलना, लेकिन परम व्रजेत का अर्थ है भगवान के परम धाम वृंदावन ले जाएगा कृष्ण का कीर्तन। भगवान का यह शब्द है भगवत गीता में, भवामी निचरात पारत मई आवेशित चेतसा, जिसका चित्त मुझ में आविष्ट है, जो मेरा भजन कर रहा है, उसको मैं संसार सागरात भवामी निचरात पारत, मैं ही आके उसको वापस अपने धाम ले जाता हूं। पापियों को यमदूत ले जाते हैं, पुण्य आत्माओं को स्वर्ग से आके कोई विमान ले जाता है, वैकुंठ में जाने वालों को तो नंद और सुनंद विमान आके ले जाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं भक्तों को मैं गरुड़ के ऊपर चढ़ के आता हूं और साथ ले जाता हूं। तो भवामी, तो परम व्रजेत का मतलब है मैं अपने आप उसको अपने धाम ले जाऊंगा, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना चाहिए, अब महाराज की प्रसन्नता किसमें है, हम स्वयं हरे कृष्ण जपें और दूसरों को जपने के लिए प्रेरित करें, बस यही एक काम करना है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।